सम्यक ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड लेक्चर नंबर 10। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयर्याणम्, नमो वज्झायाणम्, नमो लोए सवसाहूणम्। प्रणमीय शिरसाणेमिं गुणरयण विभूषणम् महावीरम् सम्मत्करयण निलयम् पयडि समुक्कीर्तनम् वोचम् परम भये सबखण्डिके परम काण्ड समुदाय सहज अखण्डित ज्ञानमय जयवन्ते जिनराय विघ्नहरण मङ्गलकरण नमो सिद्ध सुखकार नेमि चंद दिन जगतपति साधु वचन गुणधार। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने इस गोमरसार कर्मकांड ग्रंथ की रचना की है। उसके आधार से पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका नाम की अपनी ढूंढारी भाषा में भाषा टीका लिखी थी, उसी का यह हिंदी अनुवाद है। हम पृष्ठ संख्या 69 पर आगे 69। यहाँ हम उत्तर प्रकृतियों की बात देख रहे हैं। ज्ञानावरण कितने प्रकार का है मिली भाई? हाँ, दर्शनावरण माधवी 9। फिर उसके बाद नंबर किसका है? वेदिनी कितने हैं? 2 है, और मुनि 28। आयु? हाँ। उसके बाद नाम कितने? 93। उसके बाद गोत्र? 2। और कौन रह गया? अंतर कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। यहाँ तो हम मुनि 4 प्रकार का है वो देख रहे थे। उसमें हम पृष्ठ संख्या 69 पर आ गए, दूसरा पैराग्राफ। वहाँ कषाय वेदिनी 16 प्रकार का है। ये यहाँ पहले तो हमने सारी प्रकृतियों के नाम और वो कितने हैं वो देख लिया था। ये जो उनके नाम है वो कैसे तैयार हुए, उसका अर्थ क्या है, उसकी बात यहाँ चल रही थी। तो कषाय का अर्थ हमने कशंति धातु है, यानी कशंति यानी आत्मा के चारित्र का घात करते। कहीं कहीं कशंति का अर्थ वो दुख देते ऐसा भी आता है। अब ये 16 प्रकार का जो है उसकी बात यहाँ देख रहे हैं। वह कहते हैं कषाय क्रोध मान माया लोग, इनकी 4 अवस्थाएं, यानी क्रोध की 4, मान की 4, माया की 4 और लोभ की भी 4 अलग अलग टाइप उसमें है। तो कहते हैं अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोग, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोग, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोग, उसके पश्चात क्रोध संज्वलन, मान संज्वलन, माया संज्वलन और लोभ संज्वलन। अभी एक एक शब्द कैसे तैयार हुआ, अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान, उसका अर्थ यहाँ कहेंगे। जब उसका अर्थ देखेंगे यानी शब्द कैसे तैयार हुआ, तो उस कषाय संबंधी हमें एग्जैक्ट उसका पता चलेगा। वहाँ अनंत अर्थात अनंत संसार का कारण मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का दूसरा नाम अनंत भी है, क्योंकि वो अनंत संसार को कारणभूत है, इसलिए मिथ्यात्व को ही अनंत भी कहते हैं। उसे अनुबंधंती अर्थात संबंध रूप करे वे अनंतानुबंधी जानना, यानी वो मिथ्यात्व के साथ मिले हुए हैं। जैसे मिथ्यात्व सम्यक्त्व में बाधा डालता है, ऐसे अनंतानुबंधी का भी कार्य है। तो चारित्र मुनि का, फिर भी वो मिथ्यात्व के साथ काम करता है, मिलकर डबल एजेंट है। अभी अप्रत्याख्यान का अर्थ बता रहे हैं, शब्द तैयार कैसे होता है। अर्थात ईषत यानी किंचित मात्र। अ का अर्थ नहीं है, ऐसा नहीं अभावात्मक नहीं है, अ यानी थोड़ा किंचित। और प्रत्याख्यान अर्थात संयम, संयम अर्थात जो मुनि योगी जो संयम है उसको संयम कहा यहाँ, यानी अंतरंग में स्थिरता वो वाला संयम लेना, और उसके साथ बाह्य में जो कोई व्रतादि होते उसको भी उसके साथ लेना। तो कहते प्रत्याख्यान का अर्थ होता है संयम, प्रत्याख्यान का एक अर्थ होता है त्याग भी होता है उसको है? जो देश संयम को आवृत करे अल्प मात्र भी होने न दे वे अप्रत्याख्यान आवरण है। अ का अर्थ क्या देखा, किंचित अणुमात्र, किंचित यानी अणुमात्र, प्रत्याख्यान यानी त्याग, थोड़ा भी त्याग नहीं होने देते, यानी देश चारित्र थोड़ा त्याग है, उतना भी जो नहीं होने देते उसको कहेंगे अप्रत्याख्यान। चौथे गुणस्थान वाले के तो अप्रत्याख्यान आवरण का उदय है, वैसे तो पहले दूसरे तीसरे चौथे सबको है, परंतु पांचवे वाले को नहीं है, क्योंकि जब तक उसका उदय था तब तक उसके अनुव्रत लेने के परिणाम नहीं हो रहे थे, थोड़ा भी त्याग नहीं हो रहा था। अर्थ ख्याल में है ना, तभी उसका एग्जैक्ट हमें पता चलेगा कि चौथे तक तो है उसका उदय, ऊपर नहीं है। ये अप्रत्याख्यानावरण हुआ। अभी प्रत्याख्यानावरण मनुष्य प्रत्याख्यान अर्थात सकल संयम, सकल संयम कहो महाव्रत आदि के परिणाम कहो, ये सकल संयम मात्र बाह्य व्रतों की बात नहीं है, यह अंतरंग में जो स्थिरता रूप चारित्र है उसकी यहाँ बात है। उसे आवृणंती अर्थात आवृत करे, ढक दे, न होने दे वे प्रत्याख्यानावरण है। आवरण है ना शब्द, उसको संयम को आवृत करता है, ढक देता है, नहीं होने देता। कषाय का नाम भी ऐसा ही है और कर्म का नाम भी ऐसा ही है। उसका पूरा नाम क्या है, अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण। हम उसको शॉर्ट में अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान कह देते हैं, कहना कोई बात नहीं, परंतु वो अप्रत्याख्यान ही नहीं, अप्रत्याख्यान भी नहीं होने देता। और ये प्रत्याख्यानावरण इन्हें प्रत्याख्यान नहीं होने देता, ऐसा उसका अर्थ। आगे आवरण शब्द है वहां पर, हम कभी कभी उसको गौण करके कहते नहीं है, फिर भी वो समझना, वो प्रत्याख्यानावरण है। अभी संज्वलन का अर्थ करते हैं। सम अर्थात एकीभूत होकर, ज्वलंती अर्थात संयम सहित अपने प्रकाश को करे, यानी यहाँ संयम भी बना रहे और ये कषाय का कार्य भी चले। प्रत्याख्यानावरण कैसा था, संयम होने नहीं दे रहा था, ये संयम होने में कोई बाधा नहीं डालता, फिर भी मंद रूप से वहाँ उसका कषाय का कार्य चल रहा है, संयम भी चल रहा है। क्योंकि मुनियों को हम देखते हैं संज्वलन का उदय है, मुनिपना नष्ट नहीं होता, छठा सातवा गुणस्थान चल रहा है, ऊपर भी यथायोग्य गुणस्थान तक संज्वलन है। तो यहाँ कहते हैं संयम सहित अपने प्रकाश को करे, अथवा इनके होने पर भी संयम है। इनके यानी किसके नितिन, हाँ कौन से संज्वलन, राजदेश मोह नहीं ले, संज्वलन के होते हुए भी संयम बना रहे। ज्वलती अर्थात प्रकाश रूप करते हैं वे संज्वलन है, ये सब मिलकर 16 कषाय हुए। इनके नाम कैसे तैयार हुए ये बात हमने देखी,
ऊपर ज्वलंती है और नीचे ज्वलती है।
ज्वलंती अनेक वचन है, ज्वलती एक वचन है,
मतलब वो दोनों एक ही होने चाहिए अलग अलग,
ये दोबारा बताने की एक्चुअली जरूरत ही नहीं थी, फिर भी उन्होंने लिखा है, इसलिए भी प्रकाश रूप करते हैं है, अनेक वचन है, तो वहां भी ज्वलंती ही चाहिए था। यानी ज्वलंती के दो प्रकार के अर्थ किए उन्होंने, यहाँ भी ज्वलंती कर दो तो अच्छा व्याकरण की दृष्टि से अच्छा रहेगा। क्योंकि ज्वलती एक वचन है और ज्वलंती अनेक वचन है, यहाँ प्रकाश रूप करते हैं हिंदी में तो अनेक वचन लिया है। अभी नौ कषाय की बात करेंगे। पुनश्च नौ अर्थात ईषत किंचित मात्र, नौ का अर्थ क्या है किंचित, एनो ए नहीं है ऐसा उसका अर्थ नहीं है, नो एने थोड़ा किंचित, ऊपर अ यानी किंचित लिखा था, यहाँ नो यानी किंचित लिया, नो कशा है, नो अर्थात ईशत, किंचित मात्र, ईशत ये संस्कृत शब्द है, ईशत यानी थोड़ा। क्रोधादि के समान जो प्रबल नहीं है ऐसे जो कषाय वे नो कषाय है, यानी जैसे क्रोध मान माया लोग प्रबल है ऐसे ये हास्य रति आदि प्रबल नहीं है, ज्यादा पावरफुल नहीं है, उनका वेदन करे अथवा इनके द्वारा वेदे जाए, नो कषाय रूप अनुभव करे वे नो कषाय वेदनीय है। जैसे हमें हास्य का अनुभव होता है, शोक का अनुभव होता है, तो क्या कहेंगे उसको, नो कषाय वेदनीय, वेदनीय शब्द डाला गया। वे नौ प्रकार के हैं, ये तो हमें सबको मालूम है, फिर भी उसका कार्य क्या है, अर्थ क्या है, उसको देखेंगे। वहां जिसके उदय से हास्य प्रकट हो जाए वह हास्य है, यानी हास्य नाम का नौ कषाय है। जिसके उदय से क्षेत्रादि में उत्सुकता प्रीति हो जाए वह रति है, क्षेत्रादि यानी किसी वस्तु के प्रति आसक्ति होती है, प्रीति के भाव होते हैं, वो अच्छी लगती है तो उसको कहेंगे रति। क्षेत्रादि क्षेत्र है, मकान है, कुछ भी लेना है ना, क्षेत्रादि में कुछ भी ले सकते हैं, ये सोफा भी ले सकते हैं आप, ले सकते हैं ना, सोच सकते नहीं तो आप लेके
ऐसा नहीं है, ये क्षेत्र का अर्थ है कुकुमा, उसमें कितना अच्छा लगता है मे महीने में।
देखो देखो क्षेत्र में, क्षेत्र मकान सोना चांदी सब लगा लो आप, हाँ वो भी लगा सकते हैं, हाँ हाँ कुछ भी। रति किसी के भी प्रति हो सकते ना, किसी वस्तु के प्रति, किसी हाँ जीव के प्रति वो रति है। जिसके उदय से क्षेत्रादि में निरुत्सुकता यानी अप्रीति हो जाए वह अरति है, ख्याल में आती है भाई, कोई शब्द नहीं समझना, समझा तो बीच में पूछना, तो यानी कि मैं कैसे पूछूं, लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे, ऐसी बात नहीं है, हमें सीखना है तो हमें पूछना चाहिए। कभी कभी हिंदी शब्द आपको समझो नहीं, उसका अर्थ समझ में आता है, तो आप पूछना आप जरूर। हाँ देखो आपका प्रश्न है राग और रति में क्या अंतर है और अरति और द्वेष में क्या अंतर है। वैसे तो हमने देखा है ये जो क्रोध मान माया लोग उसमें भी राग रूप और द्वेष रूप हम कहते हैं, राग और द्वेष है तो बेसिक टर्मिनोलॉजी है। राग में तो माया लोभ भी आते हैं और इसमें हास्य भी आएगा, रति भी आ गई और फिर तीन वेद भी आ जाएंगे, ये सारे राग के भेद है और रति उसका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक भेद है। रति शोक भाई जुगुप्सा और ऊपर हाँ क्रोध और मान वो द्वेष रूप है। अब शोक की परिभाषा बताते हैं। जिसके उदय से इष्ट वियोग होने से क्लेश है वह शोक है। हमें जो चीज अच्छी लगती है और वो संयोग छूट जाए तो क्या होता है, शोक हो जाता है। जिसके उदय से उद्वेग उच्चाटन हो, डर लगे वह भय है। जिसके उदय से अपने दोष को ढाके, अन्य वस्तु के दोष को देखे वह जुगुप्सा है।
अच्छा।
अन्य वस्तु के दोष के देखे उसके प्रति ऐसी नफरत सी हो जाती है, घृणा होती है, उसको यहाँ जुगुप्सा का। हाँ इसमें दोनों में, गुजराती में आप चित्री चर कहते हैं ना, चित्री चर
अणगमो था जिना का।
जिसके उदय से स्त्री संबंधी भावों को प्राप्त हो, देखो स्त्री संबंधी नहीं, स्त्री जैसे, स्त्री को जैसे भाव प्राप्त होते वैसी बात है, वह स्त्री वेद है। इसका अर्थ हम विशेषार्थ में और देखेंगे, पहले यहाँ से पढ़ लेते हैं। जिसके उदय से पुरुष संबंधी यानी पुरुष जैसे भावों को प्राप्त हो वह पुरुष वेद है, और जिसके उदय से नपुसक संबंधी यानी नपुसक जैसे भावों को प्राप्त हो वह नपुसक वेद है। विशेषार्थ, स्त्री के पुरुष प्रति आकर्षण यानी मैथुन सेवन के भाव स्त्री वेद है, जिसको हम कहेंगे सेक्सुअल अट्रैक्शन, उसकी बात यहाँ चलती है वेद में।
वो भावों की बात है।
हाँ, भाव की बात चल रही है यहाँ पर। शरीर की रचना अलग बात है और यहाँ भाव वेद की बात चलती है। कभी कभी शरीर की रचना और भाव समान होते हैं, शरीर भी स्त्री का है और भाव भी स्त्री जैसे है, तो उसको स्त्री वेद द्रव्य से भी और भाव से भी कहेंगे। ऐसे पुरुष वेद द्रव्य से और भाव से, परंतु कभी कभी उल्टा पुल्टा भी होता है, जिसको हम होमोसेक्सुअल कहते हैं। उसके बाद हम बाद में करेंगे, पहले इसकी बात देखते हैं, इसको किसको क्या कहना। देखो, स्त्री के पुरुष प्रति आकर्षण मैथुन सेवन के भाव स्त्री वेद है, पुरुष के स्त्री प्रति आकर्षण पुरुष वेद है, दोनों के साथ रममान होने का भाव नपुसक वेद है, द्रव्य पुरुष के पुरुष ही के प्रति आकर्षण भाव स्त्री वेद है। क्या कहते हैं? वो तो शरीर से तो पुरुष है और उसको किसी अन्य पुरुष के प्रति अगर आकर्षण होता है तो उसको क्या कहेंगे? भाव से स्त्री वेद। ये बात ख्याल में आई? हाँ। ऐसे ही सब में लगाना, सब में लगाने यानी द्रव्य से स्त्री है और उसको स्त्री के प्रति आकर्षण है तो हम कहेंगे भाव से पुरुष वेद है। जन्म से मरण तक एक ही वेद का उदय रहता है। ये विशेषार्थ में लिखने का प्रयोजन ये है कि इसके संबंध में बहुत भ्रांति चल रही है अनेक जगह, इन्हें स्वाध्याय करने वालों में। क्यों? क्योंकि वो तो ऐसा सुन के रखा है कि कितने ही विद्वानों से कि ये वेद पलटते रहते हैं, इसलिए ये भ्रांति सब जगह चल रही है। यहाँ तक कि उदाहरण देते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई जब युद्ध करने लगी, घोड़े पर सवार होगी, तो उसका स्त्रीवेद पलट कर पुरुष वेद हो गया। पुरुष जैसा युद्ध करना ये वेद का कार्य नहीं है। ये वेद नाम की जो तीन कषायें हैं, ये तो मैथुन सेवन के भाव संबंधी बात है। यहाँ पर, यहाँ कोई अन्य उसका कार्य है ही नहीं है। जैसे कोई ऑफिसर बन जाए कुर्सी पर बैठे और वो तो उसका पुरुष वेद थोड़े ही हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। समझे? जैसे वो ब्रह्मदेश में तो सारी स्त्रियां ही खेती करती हैं और वो पुरुष ससुराल में चले जाते हैं। हमने स्कूल में पढ़ा था। तो थोड़े वहाँ उल्टा उदय होगा, ऐसी बात नहीं है। ख्याल में आई ना? वो तो कोई भी कार्य बाह्य में कोई कार्य करे वो उसका कुछ वेद का कार्य नहीं, इतनी बात है। देखो यहाँ क्या कहते हैं, जन्म से मरण तक एक ही वेद का उदय रहता है। जो जन्म से भाव की बात चल रही है, द्रव्य तो वही रहता ही रहता है। आजकल लोग पूछते हैं, देखो ये ऑपरेशन हुआ और ये हुआ, वैसा हुआ वैसा हुआ, वो तो क्यों कुछ, यानी उसमें कुछ दम नहीं है। क्योंकि लास्ट टाइम हम अमेरिका गए उसके पहले न्यूज़ आई थी, वो पेपर में पढ़ा था कि उसने ऑपरेशन करवाया, पुरुष हो गया और उसको बच्चा पेट में रह गया, हाँ प्रेग्नेंट रह गया। इतने अंदर के जो कोई जो हो गया हॉर्मोन्स और ये, वो तो वैसे ही रहेगा। यहाँ कहते हैं जन्म से मरण तक एक ही वेद का उदय रहता है। कौन से गुणस्थान तक उदय रहता है? तो नौवे गुणस्थान, पहले से लेकर नौवे गुणस्थान के पहले भाग तक, यानी वो उदय यानी वो चेंज नहीं होता। नौवे तक जब हम कहते हैं द्रव्य से तो पुरुष ही है वे, क्योंकि छठा सातवां गुणस्थान किसको होगा? जो द्रव्य से पुरुष है उन्हीं को होगा। भाव में तीनों ही वेद हो सकते हैं अन्य अन्य जीवों को, एक जीव का कहीं पलटता नहीं है, जिसका जो है वो कायम रहता है। तिर्यंच और मनुष्यों में नाना जीवों में तीनों ही वेद पाए जाते हैं। नाना जीव शब्द लेकर, नाना का अर्थ होता है अनेक, अलग अलग जीवों में तीनों ही प्रकार के वेद पाए जाते हैं। कहाँ? मनुष्यों में और तिर्यंचों में। नारकियों में नपुसक वेद होता है, यानी एक ही वेद है वहां पर नपुसक वेद, वहां कोई स्त्री या पुरुष ऐसा वेद, ऐसे वेद नहीं होते, ना द्रव्य से होते ना भाव से होते। देव और भोग भूमि में जैसा द्रव्य वेद है वैसा ही भाव वेद होता है, यानी देव जो सारे है पुरुष, वो सारे पुरुष वेदी ही है, और जितनी देवांगना है देवियां वो सारे स्त्री वेद ही वाले ही भाव से, उनके ऐसे अलग टाइप जो हमने बताए पहले, वो मात्र मनुष्य और तिर्यंचों में ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए देखिए वेद मार्गणा सम्यक ज्ञान चंडिका जी का, इस पर हमने चर्चा वहां भी बहुत की। अब आगे हम पढ़ेंगे। पुनश्च पर्याय धारण करने का कारण एति अर्थात प्राप्त हो वह आयु है। एति शब्द से वो आयु शब्द तैयार, वो व्याकरण के नियम में जाने की हमें जरूरत नहीं है और वो समझ में भी नहीं आएगा। नारकादि पर्यायों में प्राप्त होने के संबंध से आयु के भेद करते हैं। नारकादि में किसको लेना नेसी भाई? नारकादि पर्याय आदि में किस किस को सोचेंगे हम? हाँ बोलो, नाम लेके बोलो ना। नारक पर्याय, दूसरी कोई पर्याय मालूम है? मनुष्य और तीर्यंच और देव, तो ये चार पर्याय नारकादि पर्याय में का नारकी है, तीर्यंच है, मनुष्य है, देव है। नारकादि पर्यायों में प्राप्त होने के संबंध से, प्राप्त होना है ने उस पर्याय में रहना, वो पर्याय को प्राप्त हुआ है ने वो पर्याय में अभी वो जन्म लिया है वहां पर, आयु के भेद करते हैं, यानी जिस पर्याय में वो प्राप्त है वैसी उसके आयु का उदय है ऐसा हम कहेंगे। वहां जो नरक में प्राप्त वह नरकायु है। एति का अर्थ क्या है? प्राप्त हो। नरक में जो प्राप्त होती है उसको नरकायु कहते हैं। तिर्यक योनि में प्राप्त वह तिर्यंचायु है, इसको तिर्यक योनि कहेंगे। मनुष्य में प्राप्त वह मनुष्यायु है। देव में प्राप्त वह देवायु। वहां तीव्र शीत उष्ण वेदना सहित नरक में बहुत काल जीना वह नरकायु है। नरकों में तो कहीं कहीं तीव्र उष्णता है और कहीं तीव्र शीत है, वहां तो ऐसा वर्णन आता है ना, हमने छड़ाला में देखा था कि इतनी उष्णता है कि वो लोहे का गोला भी पिघल जाए, और कहीं इतनी शीत है कि जैसे वो बर्फ का वो गोला करते ना चूरा हो जाता है वैसे, यानी लोहा भी ऐसा बिखर जाता है, इतनी ठंडी है। और वो नारकियों के वैसे शरीर है, वैकरिक शरीर, उस वातावरण में रहते तो है परंतु वहां की शीत उष्ण और अन्य भी जो कोई प्रतिकूलता है तो उसमें तो संयोग को देख देख कर वहां तो बहुत दुखी होते रहते हैं।
अमेरिका में वहां जब ठंडी पड़ती है, बर्फ गिरता है, उस टाइम पहले अनाउंस करते हैं सबको रात को नल खुला, थोड़ा थोड़ा ड्रिपिंग वाटर चलना चाहिए, सबको अनाउंस करते हैं टीवी में। क्यों? वो बंद हो जावे, वो बर्फ हो जावे और वो फट जाते हैं।
हाँ, नल फटते, पाइप फटते,
इसलिए वो ड्रिप 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 चालू रहेगा। तो यानी यहाँ अपने कर्मभूमि में भी ठंडी का ऐसा प्रकार मिलता है तो वहाँ क्या होता होगा?
आगे देखेंगे हम। ऐसे अन्य तीनों का स्वरूप, अन्य ने अभी प्रत्येक आयु का ऐसा समझ लेना है। उन्होंने फॉर एग्जाम्पल नरक की बात की यहाँ पर। पुनश्च नाम कर्म, अभी नाम कर्म में ये जो प्रकृतियां हैं वे कैसे वे शब्द तैयार हुए, उनके क्या अर्थ है, क्या कार्य है, उसको बताएंगे। नाम कर्म पिंड अपिंड प्रकृति के भेद से 42 प्रकार का है। ये पिंड प्रकृति कितनी देखी थी हमने वीरेश भाई? पिंड प्रकृतियां 20, आप क्या कहते? 14। नितिन भाई याद है आपके? बोलो। क्रम से, हाँ, गति जाति क्रम आप बताएंगे? हाँ हाँ, संस्थान, हाँ अंगोपा, हाँ नहीं नहीं सहनन के बाद अंगोपा, संस्थान सहनन अंगोपांग, फिर आप कहेंगे आगे? हाँ बहुत अच्छा, अनुपूर्वी विहग, तो ये 14 पिंड प्रकृति है, परंतु क्रम कैसा है? अगुरु लघु, हाँ आप बोलेंगे आगे? हाँ बोलो, अगुरु लघु, आतप उद्योग, फिर भी आएगा, हाँ हाँ बादर सूक्ष्म कहना, क्योंकि त्रस के साथ बादर लगे, त्रस स्थावर बादर सूक्ष्म। हाँ नहीं, प्रत्येक शरीर और साधारण से आगे कौन कहेगा? हाँ बोलो। पहले आदे, बहुत अच्छा। तो अभी हम यहाँ उनके शब्द कैसे तैयार हुए उसकी बात देखेंगे। देखो, नाम कर्म पिंड अपिंड प्रकृति के भेद से 42 प्रकार का है। वहां जिसके उदय से आत्मा पर्याय से पर्यायांतर को, ये पर्यायांतर क्या होता है? अन्य पर्याय, जैसे हम देश से देशांतर करते हैं, यहां से अमेरिका गए तो क्या हुआ? देशांतर हुआ। ये अनुवाद यानी भाषांतर, ढूंढारी भाषा में से हमने इसको हिंदी बनाया तो क्या कहेंगे? हमने भाषांतर किया हिंदी में उसी को। हाँ, जात्यंतर, वो सम्यक मिथ्यात्व वाला परिणाम, उसको कहेंगे जात्यंतर। तो ये पर्यायांतर, पर्याय से पर्यायांतर को गच्छति अर्थात प्राप्त हो जाए, यानी जाता है अपनी भाषा में, एक पर्याय से दूसरे पर्याय को प्राप्त होता है, वहां चला जाता है, उस पर्याय में जन्म लेता है, उसे गति कहते हैं। वह गति नाम कर्म चार प्रकार का है। वहां जिसके उदय के निमित्त से आत्मा की नारक पर्याय होती है, वह नरक गति नाम कर्म है। ऊपर आयु की बात क्या की थी? नरक में जो प्राप्त हो वह आयु है, और यहाँ कहते कि जिसके उदय के निमित्त से आत्मा की नारक पर्याय होती है वह नरक गति है। जिसके उदय से आत्मा की तिर्यंच पर्याय होती है वह तिर्यंच गति नाम कर्म है। जिसके उदय से आत्मा की मनुष्य पर्याय होती है वह मनुष्य गति नाम कर्म है, और जिसके उदय से आत्मा की देव पर्याय होती है वह देव गति नाम कर्म है। इसमें कोई प्रश्न है किसी को? आगे बढ़ेंगे। उन गतियों में, अभी थोड़ा ये अटपटे शब्द आएंगे उसका अर्थ देखेंगे। उन गतियों में अव्यभिचारी सादृश्य भाव द्वारा एकत्रित किए हुए जीव वह जाति है। क्या कहना चाहते हैं? जाति कौन कौन सी देखी थी हमने? एक इंद्रिय द्विंद्रिय आदि। तो वो इसका अर्थ, इस वाक्य का ऐसा अर्थ है, ऑन व्हाट बेसिस एक इंद्रिय द्विंद्रिय तीनिंद्रिय चौद्रिय ग्रुप बनाए हैं? व्हाट बेसिस है ना, किस आधार पर? उनमें ऐसी क्या बात है जो ग्रुप्स कैसे बना सकते हैं? उनमें कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, समानता होनी चाहिए। तो इनमें ऐसी कौन सी समानता है कि जिसके आधार से हमने उनको एक ग्रुप बनाया, एक केंद्रीय जाति बना दी? तो इसको क्या कहा? सादृश्य भाव। सादृश्य भाव है क्या? कॉमन, समानता। सादृश्य भाव है समानता, यानी कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कहो या कॉमन उसके कोई कैरेक्टर, कॉमन कैरेक्टर कौन सा है? सादृश्य भाव। और वो कैसा है? अव्यभिचारी। व्यभिचार ने दोष, अव्यभिचारी ने कोई उसमें दोष नहीं, यानी ऐसे कोई सब में समानता है, उसके बेस पर हम उनको एक केंद्रीय जाति में इकट्ठे कर सकते हैं। या कहते हैं सादृश्य भाव द्वारा एकत्रित किए हुए जीव वह जाति है। जैसे एकेंद्रिय द्विंद्रिय आदि परस्पर समान रूप होकर मिलते नहीं है, इसलिए अव्यभिचारी है। क्या कहना चाहते हैं? एकेंद्रिय जाति अलग है, द्विंद्रिय जाति अलग है, वो भिन्न भिन्न है, उनमें कुछ समानता ऐसी नहीं है कि उनको हम दोनों में से किसी को इकट्ठा कर दें, इसलिए उसको कहते हैं अव्यभिचारी। तथा एकेंद्रीय जितने जीव है उनके एकेंद्रीय अस्तित्व की अपेक्षा समानता है, यह सादृश्य भाव है। अव्यभिचारी यानी दूसरे के साथ असमानता, द्विंद्रिय आदि के साथ असमानता, और सभी एकेंद्रियों के आपस में समानता। समझ में आएगा? एकेंद्रीय है वो द्विंद्रिय के साथ समान नहीं है, पंचेंद्रिय के साथ समान नहीं है, वो तो अव्यभिचारी है, परंतु एकेंद्रीय की दूसरे एकेंद्रीय के साथ समानता है, वो सादृश्य भाव। तो अव्यभिचारी सादृश्य भाव ऐसा सादृश्य है कि वो एकेंद्रिय का एकेंद्रिय के साथ तो समान है परंतु द्विंद्रिय के साथ समानता नहीं। ख्याल में आती है ना ये बात? हाँ देखो, इस तरह नीचे से दूसरी लाइन, जिस एक अव्यभिचारी सादृश्य भाव में जीव एकत्रित किए जाते हैं वह जाति है। जाति नाम कर्म पांच प्रकार का है। वहां जिसके उदय से आत्मा एकेंद्रिय है कहते हैं वह एकेंद्रिय जाति नाम कर्म है। जिसके उदय से आत्मा द्विंद्रिय है कहते हैं वह द्विंद्रिय जाति नाम कर्म है। जिसके उदय से आत्मा तीन्द्रिय है कहते हैं वह तीन्द्रिय जाति नाम कर्म है। और जिसके उदय से आत्मा चतुरिंद्रिय है कहते हैं वह चतुरिंद्रिय जाति नाम कर्म है। जिसके उदय से आत्मा पंचेंद्रिय है कहते हैं वह पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म है। अब इनमें से आपको कौन से जाति नाम कर्म का उदय चल रहा है? पंचेंद्रिय जाति नाम उदय चल रहे हैं? अभी पंचेंद्रिय है। पुनश्च अब ये तो गति और जाति हो गए, अब इसके बाद है शरीर नाम कर्म। जिसके निमित्त से शरीर की निष्पत्ति, निष्पत्ति यानी उत्पत्ति, जिसके निमित्त से शरीर की निष्पत्ति होती है वह शरीर नाम कर्म है। वह पांच प्रकार का है। ये नाम कर्म पांच प्रकार का है बताते, जिस नाम का नाम कर्म है वो उस टाइप के शरीर की उत्पत्ति में निमित्त होगा। वहां जिसके उदय से औदारिक शरीर की निष्पत्ति होती है वह औदारिक शरीर नाम कर्म है। तो ये औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय कौन कौन से जीवों को होगा? नैन्सी भाई बताएंगे, चार गतियों में से कौन से जीवों को औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय चलता है? मनुष्य को। हाँ, और के दो ही है, बराबर है। और जिसके उदय से वैकिरिक शरीर की निष्पत्ति होती है वह वैकिरिक शरीर नाम कर्म। ये किसको होगा? अमोल देवरानी, बहुत अच्छा। जिसके उदय से आहारक शरीर की निष्पत्ति होती है वह आहारक शरीर नाम कर्म है। पापा आप बताएंगे किसको होगा, कौन से मुनि को,
कौन से गति का है?
आहार कृतिधारी मुनि, पर गुणस्थान कौन सा? सातवें में नहीं होता है, छठे में होता है। इसका उदय मात्र छठवें गुणस्थान में है, और वो भी किसके होगा? जिन्होंने आहारक शरीर नाम कर्म और आहारक शरीर अंगोपांग नाम कर्म पहले बांधा है। वो बनता कहाँ है तो वो बात आ गया है, ये सातवें आठवें में बनता है। वो ही मुनिराज छठे में आते हैं, और वो जो सभी तो आहारक शरीर की रचना नहीं करेंगे, किसी को वंदना का भाव हो या कोई उन्हें अभी जैसे करणानियोग के कोई गहन विषय में कोई प्रश्न उठे मन में, यहाँ तो लिखते तत्वों में शंका, पर वो सात तत्व की शंका होगी कि नहीं होगी? नहीं तो मुनिपना नहीं रहेगा, समय तो नहीं रहेगा, वे तो बिल्कुल निशंक है। परंतु तत्वों में शंका है ना, कोई प्रश्न ऐसा उठता है, कोई चर्चा निकली है उस संबंधी कोई समाधान के लिए, और वहां कोई ज्ञानी नहीं है उनसे अधिक, तो उनके भाव आता है। तो आहारक शरीर के द्वारा जहाँ तीर्थंकर विराजमान है समोचरण में, वहाँ उनके सामने जाते उनका शंका का निरसन हो जाता है और फिर वापस लौट के आते हैं। छठे गुणस्थान के अंतर्मूर्त काल से इसकी रचना का काल और छोटा है, ये सारे उसके अंदर हो जाता है काल। तो आप कहेंगे वो गए और वहाँ दिव्य ध्वनि नहीं खिरती होगी, तो ये ऐसा नहीं होता है। वहाँ जाते उनके प्रश्न समाधान हो जाता है। जिसके उदय से तेजस शरीर की निष्पत्ति होती है वह तेजस शरीर नाम कर्म है। और जिसके उदय से कारमान शरीर की निष्पत्ति होती है वह कारमान शरीर नाम कर्म है। देखो, कारमान शरीर नाम कर्म, ये कर्म का भेद है, नाम कर्म। और कारमान शरीर में किसको लेना है? कारमान शरीर में किसको लेना, बोलो कौन से कर्म? आठों कर्मों का जो स्कंध है उसको कारमान शरीर कहेंगे। जीव के साथ पूरे आठों कर्म बंधे हुए अवस्था में पाए जाते हैं ना, उनका जो एक स्कंद बन गया है उसको क्या कहेंगे, कारमान शरीर। और वो किसके उदय में वो कर्म का ग्रहण होता है, तो कारमान शरीर नाम कर्म जो पुराना बंधा था उसका उदय चलता है हर समय, और उसके उदय में नए कर्म परमाणु ग्रहण किए जाते हैं, यानी कारमान वर्गणा कर्मरूप होती रहती है।
यानी वो जो कारमान शरीर का आकार होगा वो तो आत्मा के प्रदेश,
आत्मा के प्रदेश जितना आकार होगा,
असंख्यात प्रदेश,
असंख्यात प्रदेश ही है। और देह प्रमाण जो है आकार, अभी जीव ने समुद्धात किया तो कारमान शरीर का क्या होगा मिली भाई, मूल शरीर में रहेगा कि वो बाहर फैलेगा? हाँ, शरीर में रहेगा।
मिली क्या बोलते हैं,
मिली कुछ बोल नहीं रहे। तो जितने आत्म प्रदेश बाहर फैल गए वो मुक्त हो गए। हाँ, क्योंकि आत्मा में सर्वत्र वो फैले हुए हैं,
इक्वली स्प्रेड अप,
इक्वली है। समुदात होता है तो वहाँ तो आत्म प्रदेश भी है और तेजस कारमान शरीर भी है उसके साथ। पूरे यहाँ पूरे असंख्यात प्रदेश,
एक क्षेत्रावगाह
घन स्वरूप है ना आत्म प्रदेश, वो पूरे के पूरे सर्वत्र खींचो खींच भरा है। ये तो कर्म की बात है। और वहाँ अन्य जो पुद्गल परमाणु पड़े होंगे एक क्योंकि उस क्षेत्र में तो बहुत सारे द्रव्य है ना, आकाश द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, वैसे अन्य भी पुद्गल परमाणु कितने ही पड़े हैं। आज फोन आया था बीना से, वो सुदीप इंजीनियर है, तो वर्गणा का प्रकरण सुदीप जी,
पंडित
सुदीप जी हैं, सुदीप जी शास्त्री,
जिन्होंने हमें बीना में इन्वाइट किया था।
तो वहाँ तो
हाँ
वो हमेशा उनका फोन आता है, अभी वो समय ज्ञान चंद्रिका चल रही है, उनके वर्गणा का प्रकरण चल रहा है। तो वर्गणा यानी परमाणुओं की रेंज है वो, तो ये तो केमिकल जिसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखी है उसको इतना फिट बैठता है, जैसे वहाँ H2O कितने मॉलिक्यूल, कितने यानी अणु, कितने अणुओं का वहाँ समुदाय है, जैसे हम वो देखते हैं वैसे ही यहाँ पर है। जिसने साइंस सीखा है तो उसके लिए कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, उल्टा तो साइंस में जिन प्रश्नों का उकेल नहीं मिलता वो यहाँ मिल जाता है। वो हमें वो सुरेश प्रोफेसर मिले थे ना, वो
ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि जैसा वहाँ साइंस में बताया वैसे यहाँ नहीं, यहाँ है वैसा साइंस बता रहे हैं।
वही तो बताया मैंने, साइंस सीखने वाले को ये बातें ख्याल में आती है जो यानी उसको और ज्यादा वो विश्वास हो जाता है।
ठंडा बोलते तुम
अब यहाँ आगे शरीर नाम
सुरेश भाई का क्या बोलते थे,
वो तो औरंगाबाद यूनिवर्सिटी के
फिजिक्स के
हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स डिपार्टमेंट। तो वहाँ तो स्निग्ध वृक्ष वगैरह की बातें हुई थी और ये बंद कैसे होता है, दो का डिफरेंस वगैरह, तो उन्होंने बोला हम तो इसी बात पर रिसर्च कर रहे हैं, तो आपने उसका सॉल्यूशन बता दिया।
91 की बात है।
हाँ, 91 की बात।
आपने इसमें आते शिविर में,
देवलाली में आते, अभी रिटायर हो गए। देखो शरीर नाम कर्म के उदय के वश से जो आहार वर्गणा रूप पुद्गल स्कंद ग्रहण किए उनके प्रदेशों का, देखो क्या कहना चाहते हैं, अभी ऊपर के जो पैराग्राफ में हमने देखा था, हम औदारिक शरीर नाम कर्म की बात करेंगे। औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय किसके, मनुष्य तिर्यंचों का है। उसके उदय के कारण क्या होता है, औदारिक शरीर के जाति वाले परमाणु का ग्रहण होता है, यानी औदारिक शरीर के योग्य जो आहार वर्गणा है उसका ग्रहण होता है। अब ये तो ग्रहण हुआ तो क्या हुआ, आगे उसका शरीर रूप रचना भी होनी है ना, मात्र ग्रहण करने का कार्य नाम शरीर नाम कर्म के उदय में हुआ। अब उसके आगे का प्रोसेस यहाँ बता रहे कि शरीर नाम कर्म के उदय के वश से जो आहार वर्गणा रूप पुद्गल स्कंद ग्रहण किए, ये तो ऊपर के शरीर नाम कर्म की बात हुई, पुद्गल कर्म गए, पुद्गल परमाणु को ग्रहण किया, उनके प्रदेशों का परस्पर संश्लेष संबंध जिसके उदय से होता है वह बंधन नाम कर्म है। ये आहार वर्गणा रूप तो पुद्गलों का पुंज था, अब वो तो ओरिजिनल वहां जो शरीर होगा या उनका जो आपस में बंधन होगा, बंधन यानी आपस में जो संबंध हो जाएगा, स्कंद रूप एक रचना हो जाएगी, एक स्कंद रूप रचना। नहीं तो आहार वर्गणा, हमने शरीर के परमाणु ग्रहण किए और ये ऐसे छोटे 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 हो गए तो यहाँ क्या होगा? एक स्कंदरु रचना हो जाती है उसकी। वो बंधन नाम कर्म है। बंधन यानी जो ग्रहण किए हुए जो परमाणु है वो एक दूसरे के साथ स्कंद रूप हो जाते हैं। हाँ बहुत अच्छा, ऐसा पूछना चाहिए। आपका प्रश्न है संश्लेष संबंध का अर्थ क्या है? हम जरा देखते हैं संश्लेष संबंध ने क्या ऐसा संबंध कि जिसको अलग नहीं कर सकते। जैसे आपने चश्मा अभी डाला है ना, तो चश्मा आप कभी कभी घर में भूल के आ सकती है कि नहीं, तो चश्मे का और आपका कैसा संबंध है? ऐसा कोई संश्लेष संबंध तो नहीं है। गहने पहने हम तो चेंज भी करते हैं, कपाट में रखते हैं क्योंकि कहीं जाना है बाजार में, अरे कोई ये साकल खींच ले तो क्या कहते हम निकाल के रखते हैं। कपड़े हैं हाँ, अभी कहीं प्रसंग में जाना है, शादी में जाना है तो ये ऑर्डिनरी निकाल के रखे हमने, दूसरे पहने और चले गए। तो ये कपड़ों का हमारा ऐसा संबंध नहीं है, वो जीव उसके साथ जुदा होता है और फिर दूसरे को एक्सेप्ट करता है। अभी हम शरीर की बात करेंगे, तो शरीर को घर में छोड़ के आएंगे कि नहीं?
भूल से
आप कहते शरीर के यही मैं हूं ना इसको परंतु यहाँ जीव जुदा है और शरीर जुदा है और दोनों का भी इकट्ठा संबंध आया। वैसे उन परमाणु का भी आपस में ऐसा संबंध हो गया। जब तक वो परमाणु छूटकर नहीं जाते हैं तब तक वो जीव के साथ और वो दूसरे परमाणु के साथ बंधे हुए हैं। इसको कहेंगे संश्लेष संबंध। अब शरीर के साथ तो ऐसा संबंध है कि एक भव के लिए, कर्मों के साथ कैसा संबंध है? अरे तो भवो भवन, तो यहां से मर जाए तो ये शरीर तो यहां रहेगा, औदारिक शरीर। तेजस और कारमान तो वो जीव के साथ ऐसा संबंध है तो वो आगे के भव में भी दोनों साथ साथ चले जाएंगे। तो जीव कर्म को ले जाएगा कि कर्म जीव को ले जाएगा? नितिन भाई तो जाते कैसे? हाँ पुद्गल क्या? अरे क्यों उनको उनको सोचने दो। अरे षटकार कहीं पर डालो मत ना, कभी सीखे हो इसलिए बोलो नैन्सी भाई। अपने अपने क्रियावती शक्ति से जाते हैं।
अब वो क्रियावती शक्ति का जो कार्य हो रहा है उसमें उसका षटकारक लगेगा कि उनको एकदम डायरेक्ट घुस गया।
वो कहते कोई तो एक फॉर्मूला बता दो, कहीं तो फिर हो जाएगा।
लगा देंगे, सामने वाला नहीं समझता तो चुप बैठेगा, ऐसा समझाओ।
ये समझ में आ गई बात संश्लेष संबंध की, यानी जीव का और कर्म का कैसा संबंध है? तो संश्लेष संबंध है। अब यहाँ तो सभी शरीरों के लिए संश्लेष संबंध लिखा।
एक प्रश्न था
हाँ।
ये जो तेजस शरीर है जैसे हम कारमान शरीर की उसमें से कुछ कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति जिसको कहेंगे उत्कृष्ट उसके जो कुछ वो 70 कोड़ा कोड़ी के
हाँ, कारमान की 70 कोड़ा कोड़ी
वैसे हाँ, कारमान की हम बोलेंगे ना, वैसे तेजस शरीर की कितनी है?
66 सागर, 66 सागर
66।
ये जीवकांड में आई थी बात, योग मार्गणा में आई थी जहाँ समय प्रबद्ध की बात चली। हरेक का समय प्रबद्ध कितना है, हरेक की वर्गणा कितनी है, उसका प्रमाण क्या है कितनी, उसी हरेक की अवगाहना कितनी है, संदृष्टि में भी हमने देख लिया था लास्ट बात। वो तेजस शरीर की उत्कृष्ट स्थिति यानी वो भी अनेक भवन तक चलेगा,
वो 66 सागर
66 सागर है। ये कर्णानियोग परिचय पुस्तक में लिखा था ना उस पर,
मेरे दिमाग में 60 था इसलिए मैंने पूछा कि कल लेट में कंफर्म
66 है
मेरे हिसाब से, 60 मेरे दिमाग में बैठा है।
तो कर्णानियोग परिचय पुस्तक निकालो या
66
आपको याद है?
चलो 66
हाँ उन्होंने तो प्रश्न चिन्ह लगाया, इसके आधार क्या है, क्यों लिखते हैं इसे पुस्तक में? पुस्तक निकालने के पहले किसी विद्वानों को तो रेफर तो करो, ऐसा कहा था उन्होंने, तो उनके तो मूल पुस्तक में से निकाल के दिखाया जीवकांड में से,
और वो गलती से वही पुस्तक जिसका संपादन उन्होंने किया था।
उन्होंने तो पूरी जयपुर शिविर में उन्होंने ये बात उठाई थी, वहां तो 3-4 हजार लोगों के सामने उन्होंने बता दिया था शाम को पूरी सभा में, कि मैंने इन पर ऐसे ऑब्जेक्शन लिए, तो एक दो नहीं 20 जगह उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाए थे, 20-22 जगह, और हर एक का पेज नंबर सहित उत्तर दिया था उनको। आधे घंटे के अंदर सब निकाल के दे दिया उनको, उन्हीं की पुस्तक निकाली और उसमें से बता दिया ये इधर इधर है। तो इतने खुश हुए थे कि मैंने इस पुस्तक का संपादन किया है, और मुझे वो आनंद हो रहा है कि किसी गुरु को होता है कि उनके शिष्य उनके आगे चले जाए। क्या होता है कर्णान योग में कोई विधान करते या लिखते हैं तो बहुत अंदर से यानी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी कि कोई गलत रह जाए वहां पर बात तो आगे के लोग उसी को सच समझेंगे यानी, और ये अगर जिनागम के विरुद्ध हो जाए बात तो अपनी जिम्मेदारी कितनी बढ़ती है। तो बहुत चौकन्ना रखना। कभी कभी तो प्रूफ रीडिंग में इसमें उसमें, तो क्योंकि डीटीपी करने वाले कुछ जानते नहीं, भाषा को भी नहीं जानते, विषय को भी नहीं जानते, तो उसमें बहुत सारी भूलें गड़बड़ियां होती है जो मूल में लिखापट होती है और ये बाद में जो अपने हाथ में आता है उसमें बहुत अंतर हो जाता है। जितना हो सके उतना तो हम कोशिश करते हैं उसको सुधारने की। चलो आगे।
अभी तक 70 पेज में 3 मिस्टेक निकली।
हाँ, वो तो क्या अनेक वचनिया वगैरह ऐसी होती है, ठीक है, फिर भी जो निकलती उसको तो हम नोट डाउन करते हैं, देखेंगे जब ये आगे कभी होती है।
अमर पट्टा लिखते,
ये संश्लेष की बात हो गई। बंधन नाम कर्म, ये तीसरी लाइन तीसरे पैराग्राफ की, वह औदारिकादि शरीरों की अपेक्षा 5 प्रकार का है। वो है ने कौन? हाँ, कौन कौन से आप नाम बताना, पूरा नाम बताना। हाँ, औदारिक शरीर बंधन नाम कर्म। आगे फिर, हाँ नलिन भाई, हो गया वैक्रिक। हाँ हाँ नितिन भाई, बहुत अच्छा, ये 5 हो गए। पुनश्च अब संघात की बात करेंगे, यानी औदारिक शरीर संघात नाम कर्म की बात चलेगी, जिसके उदय से औदारिकादि शरीरों का, यानी 5 की बात है, छिद्र रहित परस्पर प्रदेशों का एक क्षेत्रावगाह से एकत्वपने को प्राप्त होना होता है, वह संघात नाम कर्म है। क्या कहना चाहते हैं? ये जो शरीर बनते हैं तो ऐसा ही तो नहीं कि यहाँ तो उंगली है इतनी और बीच में कोई स्पेस है और यहाँ पर भी एक, बीच में मात्र आत्मा प्रदेश है, वहाँ कुछ नहीं और यहाँ थोड़े प्रदेश है, ऐसा नहीं, पूरा ही है एक। ने तो फिल्मों में दिखाते हैं ना,
देवराज।
हाँ,
कुछ नाम है ना देवराज है ऐसा कुछ,
वो डांस दिखाते हैं ना कोई। तो यहाँ क्या कहते हैं, छिद्र रहित पूरे ही परस्पर अवगाह रूप उनकी एक कंदर रूप से जो रचना हो जाती है उसको संघात नाम कर्म के। बंधन में तो मात्र जुड़ गए परंतु कैसे, पूरा एक पिंड जैसा हो गया ना उसका। वह औदारिक आदि शरीरों की अपेक्षा 5 प्रकार का है, यानी औदारिक शरीर संघात, वैकृत शरीर संघात, ऐसे हर एक के ऊपर संघात संघात लगा दें। अब संस्थान नाम कर्म, जिसके उदय से औदारिकादि शरीरों का आकार निपजता है वह संस्थान नाम कर्म है, वह 6 प्रकार का है। आप कहेंगे औदारिक शरीर संस्थान, वैकृत शरीर संस्थान, ऐसा अलग अलग नहीं है, क्योंकि जो औदारिक शरीर का आकार है, अभी जीव का आकार हुआ है, उसी आकार में औदारिक शरीर बनेगा, उसी आकार में उसका तेज शरीर जाएगा, उसी आकार में उसका कारमान शरीर भी वैसा उस आकार का होगा, देह प्रमाण या देह की आकार जैसा। तो यहाँ जो संस्थान अलग अलग है आकार की अपेक्षा, अलग अलग जो नाम कर्म है उसको बताते है ना, पर वैकृत संस्थान ऐसा नाम नहीं है, उसका समचतुरस्र संस्थान होगा, वही तो मैं बता रही हूँ। वैकृत शरीर को अलग आकार और कारमान को अलग और तेजस को अलग ऐसा होगा कि वो जीव का इनॉल आकार होगा, तो जीव का जैसा आकार होगा वैसे शरीर की रचना होगी। हाँ,
वो सहनन,
वो सहनन की बात है, ये संस्थान की बात है। अच्छा हुआ पूछा आपने। संस्थान ने आकार और सहनन ने वो हड्डी वाली, वो बाद में देखेंगे। तो ये संस्थान छह प्रकार का है। वहां जिससे समान चौकोर आकार होता है वह समचतुरस्र संस्थान नाम कर्म है। आप कहेंगे ऐसे चौकोनी कोई होता होगा क्या? चौकोनी समान चौकोर का अर्थ है प्रोपोर्शनेट बॉडी। यहाँ लिखा ना चौकोर, चौकोर है ने
प्रोपोर्शनेट,
ये पूरे का अर्थ है प्रोपोर्शनेट। समचतुरस्र, समचतुरस्र समय ने समान, चारों बाजू से समान, इसका अर्थ क्या है? वो तो ऐसा ब्लॉक तो है नहीं कि चारों बाजू से समान हो, तो उसको क्या कहेंगे हम? जैसे मनुष्य है, देव है, समचतुरस्र संस्थान, तीर्थंकरों के कौन सा होता है तो समचतुरस्र संस्थान। तो ऐसे ब्लॉक जैसे थोड़ी चौकोर होते हैं, यानी प्रोपोर्शनेट बॉडी है।
यानी ऐसा भी हम देखते हैं ना, किसी का नाक बहुत लंबा होता है, किसी के कान एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, या आंखों में भी एक अलग अलग साइज होते हैं, तो समझ चतुरस्र नहीं कह रहे।
नहीं नहीं, वो पूरी बॉडी का। हाँ,
ये तो फुल बॉडी,
फुल बॉडी की बात चल रही है। एक एक अवयव की नहीं, वो तो बाद में आएगी उसमें।
नहीं, नहीं, हाँ, ये उदाहरण के माध्यम से,
उदाहरण बराबर है उसका।
वैसे आपका पूरा शरीर प्रोपोर्शनेट होगा आपका, है ना, समझ चतुरस्र।
अब न्यग्रोध अर्थात बड़ यानी वटवृक्ष, उसके समान ऊपर मोटा नीचे पतला ऐसा आकार जिससे हो वह न्यग्रोध परिमंडल संस्थान नाम कर्म है। यानी ऊपर बहुत, यानी जिसको कहेंगे चेस्ट वगैरह बहुत है और नीचे पतले एकदम कमर और पैर एकदम दुबले पतले हो, तो वो क्या होगा? न्यग्रोध परिमंडल। तो ये वटवृक्ष को कौन सा संस्थान होगा? हाँ, ये है ना, ये कौन सा, ये होगा न्यग्रोध वाला होगा ना। हाँ,
झाड़ है, वट का झाड़, उसका कौन सा संस्थान होगा, ऐसा प्रश्न है।
वृक्षों को कौन सा संस्थान होगा? एक केंद्रीय, बहुत अच्छा। वो अवक्तव्य ने हुंडक संस्थान, क्योंकि उसकी तो इतनी अवगाहना है, अंगुल के असंख्या पे भाग जितने, ये तो उसका यहाँ उदाहरण दिया है।
उनको नहीं समझा
मैंने, प्रश्न इसलिए पूछा था। यहाँ वटवृक्ष का एग्जाम्पल दिया, वटवृक्ष समझते ना,
बड़ का झाड़,
ऊपर वो बड़ा है और नीचे वो उसके जो ट्रंक जो है वो तो छोटी है। तो ऐसे कोई होता है कि ऊपर बहुत ऐसा बड़ा है यानी बहुत जाड़ा है और नीचे से बहुत दुबला है, कमर और वो नीचे के पोर्शन दुबला है, तो उसको न्यग्रोध परिमंडल कहेंगे
उस साइज।
तो इसलिए मैंने पूछा कि वृक्षों के कौन सा होगा संस्थान, क्या वटवृक्ष को ये संस्थान होगा, ये मैंने पूछा।
प्रश्न समझे, उत्तर नहीं समझे?
प्रश्न समझ में आए? तो वटवृक्ष को न्यग्रोध परिमंडल संस्थान होगा कि नहीं होगा, ये मेरा प्रश्न है। वो एक जीव नहीं है, वहाँ अलग अलग अनेक जीव है, ख्याल में आते हैं? और उनकी अवगाहना इतनी छोटी है और एक इंद्रियों में तो ये सारे अवक्तव्य आकार ने हुंडक संस्थान कहेंगे एक इंद्रियों। यहाँ तो दृष्टांत मात्र वो वटवृक्ष का लिया समझाने के लिए।
वाने जो एकेंद्रीय वनस्पति कायिक है उनका आकार हम नहीं बता पाते हैं, इसके लिए उसको अवक्तव्य कहा, बता नहीं पाते।
तो पहले का नाम क्या देखा अमूल? चतुर नहीं, चतुरस्र संस्थान। दूसरे का नाम आशा। आगे क्या? न्यग्रोध के आगे क्या? हाँ, न्यग्रोध परिमंडल संस्थान, बोलो संस्थान। हाँ, बहुत अच्छा। तीसरा है स्वाति अर्थात ऊपर पतला नीचे मोटा, ऐसा आकार जिससे हो वह स्वाति संस्थान नाम कर्म है, ये तीसरा हुआ। चौथा कुब्जा, कुब्जक संस्थान, कुब्जा आकार जिससे हो वह कुब्जक संस्थान है। कुब्जा समझते हैं? हंस, कुबड़ा, मराठी में कुबड़ा कहते हैं।
वो आप कोई गुजराती शब्द
गुजराती में क्या कहते हैं?
खोड़ो
नहीं,
खंदो खंदो
कुंदो कुंदो
कुंदो कुंदो
कुंदो कहते हैं ना, हंचबैक हंचबैक। ठिंगना आकार जिससे हो वह वामन संस्थान नाम कर्म है। ड्वार्फ जिसको कहेंगे ठिंगना, हाँ। अनेक अवक्तव्य आकार जिससे हो वह उंडक संस्थान नाम कर्म है। क्या नारकियों का उंडक संस्थान होता है? मनुष्यों में भी पाया जाता है, मनुष्यों में भी पाया जाता है। ये छह संस्थान मनुष्यों में भी हो सकते हैं, जिसके उदय से अंगोपांग के भेद होते हैं वह अंगोपांग नाम कर्म है। अंगोपांग हमने देखे ना, मुख्य अवयव और छोटे छोटे अवयव, वह तीन प्रकार का है, औदारिक अंगोपांग, वैक्रिक अंगोपांग, आहारक अंगोपांग। अंग और उपांग है, कहीं कहीं अंगोपांग लिखते, परंतु अंगोपांग सही बात है। अब सहनन की बात आती है। ये तेजस अंगोपांग और कार्मण अंगोपांग है कि नहीं है? हाँ नहीं। जिसके उदय से हड्डियों के बंधन की विशेषता होती है, यानी हड्डियां कैसी है उनके बंधन कैसे है आदि जो बातें होती है उसमें सहनन कहेंगे। वह सहनन नाम कर्म है। वह छह प्रकार का है। देखिए छह नाम लिखे यहाँ, वज्र ऋषभ नाराज, वज्र नाराज, नाराज अर्ध नाराज, कीलित असंप्राप्ता सुपाटिका सहनन। कल इसको याद किया था हमने, वहां सहनन नाम तो हड्डियों के समूह का है। सहनन का अर्थ क्या है? हड्डियों का समूह। और ऋषभ अर्थात जिसके द्वारा वेष्टित करे बांधे, जैसे रस्सी से बांध देते हैं उसको ऋषभ कहेंगे। नाराज नाम कील का है, कील समझते ना, कीला नेल, जैसे लोहे की कील लकड़े में ठोकते हैं। पुनश्च वज्र समान जो भेदा न जाए ऐसा हो उसे वज्र कहते हैं। इस तरह जिस वज्र सहनन युक्त शरीर में वज्र का ऋषभ, पहले वज्र की हड्डी, वज्र का ही ऋषभ और वज्र का नाराज यानी कीला हो, ऐसा शरीर जिसके उदय से होता है वह वज्र ऋषभ नाराज शरीर सहनन नाम कर्म है। ये ख्याल में आई बात? वज्र की हड्डी, वज्र का ऋषभ यानी वेष्टन उसका कवरिंग, और वज्र के नाराज यानी कील, वज्र से ही वो जॉइंट्स उसके फिक्स किए हुए हैं। जहां वज्र का ऋषभ नहीं है, सामान्य ऋषभ द्वारा वेष्टित हो ऐसा शरीर जिसके ऋषभ यानी उसका वेष्टन जिसके उदय से हो वह वज्र नाराज शरीर सहनन नाम करें। वज्र और नाराज कह दिया, उसमें जो ऋषभ जो वेष्टन है वो ऑर्डिनरी है, हड्डी तो वज्र की है। पुनश्च वज्र विशेषण रहित साधारण नाराज से कीलित हड्डियों की संधि हो ऐसा शरीर जिसके उदय से हो वह नाराज शरीर सहनन नाम कर्म है। ये जो कील है वो ऑर्डिनरी है, वज्र वाला नहीं। जहां हड्डियों की संधि, संधि यानी जॉइंट, नाराज से अर्ध कीलित हो यानी हाफ में ही वो है, पूरा जॉइंट वो फिक्स नहीं है, आधे में है, ऐसा शरीर जिसके उदय से हो वह अर्ध नाराज शरीर सहनन नाम कर्म है। हम भी ऐसे देखते हैं, ये तो एल्बो जॉइंट है, यहाँ भी ऐसे एक दूसरे में ऐसे है, अंदर कीला तो नहीं है परंतु इस तरह से वो एक दूसरे में फिक्स है। और ये जो हड्डियां वो कैसे, वो बाहर है और बस ऐसे पृथक पृथक है बिल्कुल, और ये जो एल्बो जॉइंट में के वो अंदर है, और ऐसे हिप जॉइंट है वो तो उसका जो है ऐसा हेड होता है उसके अंदर वो रोटेट होता है। परंतु फिर भी वो दोनों सेपरेट हैं, वहां कोई कील नहीं है अंदर, यहाँ कील वाले हैं। अर्धनारचवा, जहाँ वज्र की हड्डी नहीं है तथा वे परस्पर कीलित हो, ऐसा शरीर जिसके उदय से हो वह कीलित शरीर सहनन नाम कर्म है। जहाँ परस्पर प्राप्त नहीं होती, जुदी जुदी सरीसृप की हड्डियों की तरह नसों द्वारा बंधी हुई हड्डियाँ हो, ऐसा शरीर जिसके उदय से हो वह असंप्राप्ता सृपाटी का शरीर सहनन नाम कर्म है। यही रुकेंगे हम ना, हमारा समय हो गया। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो पालो, सोवाणी मस्तक न हो सदा देत हो। नलिन भाई,
नमो अरिहंताणं, नमो सीताणं, नमो आर्यणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये संसारणं, नमो अरिहंताणं, नमो सीताणं, नमो आर्यणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये संसारणं।